पृष्ठ संख्या 47, दादू दयाल। यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथी लोग, इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और इन्हें कुछ लोग मोची या धुनिया। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादू पंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादी राम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। वहां मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना में जयपुर से 20 कोस दूर आकर रह गए। वहां से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहां भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक रखी हैं। और निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू की बाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद पृष्ठ संख्या 48 भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घर के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की बाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की बाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी बाणी में भी वही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों की बाणियों में साधारणतया आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सद्गुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पदों से हो सकता है। घी व दूध में रमी रहा, व्यापक सभी ठौर, दादू बकता बहुत है, मथि काढ़े ते और। यह मसीत यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी, बाहिर काहे जाई। दादू देख दयाल को, सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमी रहा, तू जनी जाने दूर। केते पारखी पची मुए, कीमती कही न जाई, दादू सब हैरान है, गूंगे का गुड़ खाई। जब मन लागे राम सो, तब अनत काहे को जाई, दादू पानी लूण ज्यों, ऐसे रहे समाई। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वय पख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा, वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जगथे न्यारा। सम दृष्टि सु भाई सहज में, आप ही आप विचारा, मैं तैं मेरी यह मति नाही, निर्बैरी निर्विकारा। काम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा, एही पति पहुंची पार गही दादू, सो तब सहज संभारा। सुंदर दास, ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में द्यौसा नामक स्थान जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल द्यौसा में गए थे। तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ, तब तक ये नराना में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान द्यौसा में आ गए। वहां संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए। वहां 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपुताने के फतेहपुर शेखावटी नामक स्थान पर आ रहे। यहाँ के नवाब अलीफ खां इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 को सांगानेर में हुआ। इनका डील ढोल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्ध हस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व और सवैये रचे हैं। यो तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलाप ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कवित्व पृष्ठ संख्या 49 सवैये ही अधिक हैं। इन कवित्व सवैयों में यमक अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं, जैसे गुजरात पर आभर छीत अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी मारवाड़ पर वृक्ष न नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है। मारू दक्षिण पर गंधत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करे सब भच्छन। पूरब देश पर ब्राह्मण क्षत्रिय बैसरु सूदर चारोई वर्ण के मच्छ बघारत। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। गेह तज्यो अरुनेह तज्यो पुनि खेह लगाई के देह सवारी मेह सहे सिर सीत सहे तन धूप समय जो पंचागिनी बारी भूख सही रही रुख तरे पर सुंदर दास सबे दुख भारी दासन छाड़ी के कासन ऊपर आसन मार्यो त ऐस आसन मारी। व्यर्थ की तुकबंदी और ऊटपटांग बानी इनको रुचिकर न थी, इसका पता इनके इस कवित्व से लगता है। बोलिए तो जब तब बोलिबे की बुद्धि होए ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए जोरिए तो तब जब जोरिबे को रीति जाने तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए गाइए तो तब जब गाइबे को कंठ होए श्रवण के सुनत ही मने जाए गहिए तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु सुंदर कहत ऐसी बानी नहीं कहिए। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। पातिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। दो उदाहरण अलम हैं। पति ही सुप्रेम होए पति ही सुनेम होए पति ही सुक्षेम होए पति ही सुरत है पति ही यज्ञ जोग पति ही है रस भोग पति ही सुमिटे सोग पति ही कुजत है पति ही है ज्ञान ध्यान पति ही है पुण्य दान पति ही है तीर्थ नान पति ही को मत है पति बिनु पति नाही पति बिनु गति नाही सुंदर सकल विधि एक पति व्रत है। सुनत नगारे चोट बिगसे कमल मुख अधिक उछाह फूल्यो मात है न तन में फेर जब सांग तब को नहीं धीर धरे कायर कपाय मान होत देखी मन में कूदी के पतंग जैसे परत पावक माही ऐसे टूटी परे बहु सावत के गन में मारी घमसान करी सुंदर जुहारे श्याम सोई सूरबीर रूपी रह जाए रन में। इसी प्रकार इन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि कहे हैं वे भी औरों के समान मनमाने और ऊटपटांग नहीं हैं, शास्त्र के अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए नीचे का पद लीजिए जिसमें ब्रह्म के आगे और सब क्रम पृष्ठ संख्या 50 सांख्य के अनुकूल हैं। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रगति प्रकट भई प्रकृति ते महतत्व पुनि अहंकार है अहंकार हु ते तीन गुण सत रज तम तमहु ते महाभूत विषय पसार है रजहु ते इंद्र दस पृथक पृथक भई सप्तहु ते मन आदि देवता विचार है ऐसे अनुक्रम करि शिष्य सु कहत गुरु सुंदर सकल यह मिथ्या भ्रम जा रहे। मलुकदास मलुकदास का जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई। ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं और इनकी गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामाते प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। आलसियों का यह मूल मंत्र, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम, इन्हीं का है। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, रत्नखान और ज्ञानबोध। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कविता आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में हैं। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। अब तो अजपा जपु मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे, दस अवतारी देखी मत भूलो, ऐसे रूप घनेरे, अलख पुरुष के हाथ बिकाने, जब तै नैनन हेरे, कह मलूक तू चेत अचेता, काल न आवे नेरे, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे, कबहू न करते बंदगी दुनिया में फूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले, सबहिन के हम सब हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं पाया, 36 पवन हमारी जाति, हम ही दिन और हम ही राति, हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। अक्षय अनन्य। संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दतिया रियासत के पृष्ठ संख्या 51 अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पाँव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। यह भेद सुनो पृथ्वी चंद राय, फल चारहु को साधन उपाय, यह लोक सधै सुख पुत्र बाम, पर लोक बसे बस नरक धाम, पर लोक लोक दो सधै जाए, सोई राज जोग सिद्धांत आए, निज राज जोग ज्ञानी करंत, हठी मूल धर्म साधत अनंत। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही थी और एक नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल के शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए, जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे और कोटवा बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्य नामी संप्रदाय चलाया। इनकी वाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके शिष्य दूलम दास हुए, जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तोमर दास और पहलवान दास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए हैं। प्रयाग के वेलवेडिया प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की बानियां प्रकाशित की हैं। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का और किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त का। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है। जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, न कि वैष्णवों का। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णवत्व का और कोई अंश उसमें नहीं है। उसके सुरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग हैं सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बंध जाती है। समाधि में साधक कब संवेदनों से परे हो जाता है। अतः सुरति निरति शब्द योगियों की बानियों से आए हैं, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं।